जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद माता बाले ताई देव जा तुम्हें मागिबे प्रभु कहे एकादशे अन्न न खाइबे माता बाले ताई देव जा तुम्हें मागिबे प्रभु कहे एकादशीते अन्न न खाइबे माता बले ताई देव जा तुम्हें मागिबे प्रभु कहे एकादशीते अन्न न खाइबे अनुवाद और तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की उनकी माता ने कहा मेरे प्रिय पुत्र जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगी तब महाप्रभु बोले प्रिय माता कृपया आप एकादशी के दिन अन्न ना खाएं तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल काले से ही एकादशी के दिन उपवास रखने की प्रथा अपना ली शिलाजीव गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ में स्कंद पुराण से एक उदाहरण आया है जिसमें यह बतलाया गया है कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अपने माता पिता भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वह नीचे गिर जाता है एकादशी के दिन हर वस्तु जिसमें अन्न तथा दाल सम्मिलित है विष्णु के लिए बनाई जाती है किंतु वैष्णवों के लिए आदेश है कि वे एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी ना लें कहा जाता है कि वैष्णव भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना कोई खाद्य ग्रहण नहीं करते किंतु एकादशी के दिन वैष्णवों को विष्णु को अर्पित महाप्रसाद तक छूना वर्जित है यद्यपि ऐसा प्रसाद दूसरे दिन ग्रहण करने के लिए रखा जा सकता है एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण करना मना है भले ही वह भगवान विष्णु को अर्पित क्यों ना किया गया हो ओम अज्ञानस्त विरंधस्य ज्ञानांजन श्लाक्या चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरु श्री युता पदकमलं श्रीनामाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे हरे कृष्णा। आप सब भक्तों को पांडव निचला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे वाह, अभी आज सुबह प्रेमानंद प्रभु कह रहे थे ये कैसा उत्सव है जिसकी हम पूरे साल प्रतीक्षा करते रहते हैं दिल थाम के। जैसे ही वैष्णव कैलेंडर आता है सबसे पहले भक्तों को यही देखते हैं इस बार कब आ रही है पांडव ना, और कुछ भय भी बनता है, पता नहीं होगा कैसे होगा, पूरा दिन कुछ खाना नहीं है। और ये आते भी मई और जून के महीने में है, निचला एकादशी दिसंबर जनवरी में आती कोई इतना फर्क ना पड़ता, लेकिन भगवान ने भी विशेष परीक्षा लेने होती है। तो मई और जून ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी है ये, और अक्सर ये तभी आती है जब ग्रीष्म ऋतु अपनी पीक पे होती है। लेकिन हम देखते हैं पिछले कई वर्षों से जब भी भक्तों में उत्साह होता है, और बहुत ही बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन भक्तों के संग में अगर हम रहते हैं तो एकादशी उत्सव वास्तव में उत्सव बन जाता है। और ये एकादशी का दिन हमारे लिए ये दिन नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, पानी नहीं पीना, कुछ खाना नहीं। अगर यही सोचते रहेंगे बार बार बहुत बड़ा बोझा लगेगा मन में, अरे बाप रे इतना कुछ, सुबह से शाम तक एक बूंद पानी भी नहीं हो रहा, अरे अरे कुछ भी नहीं खाना, अरे ऐसा लगेगा गए खत्म, कितना प्रेशर महसूस होगा। लेकिन इसी ढंग से अगले नहीं नहीं ये जो निर्जला एकादशी है ये तो बहुत सुंदर अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है ये दिखाने के लिए कि भगवान मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। एक दिन की तो बात है, आप मुझसे कह रहे हैं नहीं पानी पीना, और नहीं पानी पीऊंगा मुझे बैकुंठ ले जाएंगे, लो अभी नहीं पीता पानी, क्या है क्या है क्या, कितने कितने चिरा प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु का यह आंदोलन है, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग। एक दिन बोला थोड़ा सा ये जल ग्रहण नहीं करना, खाना नहीं खाना, लेकिन फीस्टिंग फिर भी है, कैसे है वो हम चर्चा करेंगे। तो ये निर्जला एकादशी हम सब प्रार्थना करें, राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री श्री गौनिताय शिला प्रभुपाद और सभी वैष्णव के चरणों में, कि ये हमारे लिए एक साधारण तिथि की तरह ना रह जाए, एक रिचुअल की तरह ना रह जाए कि बस निकाल दे किसी ढंग से, किसी ना किसी ढंग से रो के पीट के मरते मरते निकल जाए। नहीं, हम प्रार्थना ये करें कि एकादशी हम इस ढंग से इसको मनाएं, इस ढंग से ये उत्सव की तरह करें कि जिससे हमें विशेष अनुभूतियां प्राप्त हो, है ना, क्या कहना आपका, एक रियलाइजेशन मिले हाँ ये एकादशी का मतलब है, ये एकादशी रखने का सही तरीका है, और हम अपने आप को बहुत नजदीक पाए कृष्ण के। क्योंकि एक व्रत तो है ही, इस दिन हम व्रत का मतलब है संकल्प लेना, इस दिन हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, इस दिन हम कुछ अन्न भी नहीं खाएंगे, ये एक व्रत तो है। लेकिन व्रत तो कई लोग लेते हैं, है ना, स्वतंत्रता सेनानी भी व्रत लेते हैं, करप्शन के लिए भी व्रत, एंटी करप्शन वाले लोग भी व्रत लेते हैं। तो इस व्रत में उस व्रत में क्या अंतर होगा, ये जो व्रत है ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। दृढ़ व्रता सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रता, है ना, तो दृढ़ व्रत होके दृढ़ता के साथ हमने इस व्रत का पालन करा है। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी, ये माधव तिथि है, ये ऐसी तिथि है जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। एकादशी को हरिवासर भी कहा जाता है, हरिवासर का अर्थ है कि केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम का गुणगान होगा, कथा का गुणगान होगा। एकादशी सभी प्रकार के व्रतों का राजा है, यहां पे हम भारत में विशेषकर देखते हैं सोम का व्रत, मंगल का व्रत, बुध का व्रत, वीर का व्रत, शुक्र का व्रत, शनि का व्रत, संडे को व्रत का व्रत, इसकी छुट्टी, सारे तरह के व्रत हैं, अच्छी पत्नी पाने के लिए, अच्छे पति पाने के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए, धन पाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, किसी का नुकसान कराने के लिए, हर तरह के व्रत हैं। सभी व्रतों का जो राजा है एकादशी, एकादशी व्रत कर लिया किसी और व्रत के पालन की आवश्यकता नहीं है। और वैसे तो पुराणों में जो एकादशी बताया गया है सभी एकादशी निर्जला होती है, सभी एकादशी, एकादशी पालन के मुख्यतः तीन स्तर होते हैं। टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड इज निर्जला, हर एकादशी कोई जल ग्रहण ही नहीं करना, नहीं कर सकते बहुत सब, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो निर्जला का बाद है। सेकंड स्टैंडर्ड है सजला, चलो आप नहीं कर सकते तो फिर जल पे रख लो, नहीं फिर भी बहुत दिक्कत हो रही है तो तीसरा है न्यूनतम जो स्टैंडर्ड है वो है सफल, फल के साथ ले लो, इसके बाद का कोई नहीं है, सकुटु ससेम ससाबुदाना पनीर वो नहीं है। लेकिन हम देखते हैं इस्कॉन में शिला प्रभुपाद जी की कृपा से एकादशी फीस्ट के लिए अलग अलग किताबें आ रही हैं, रेसिपीज आ रही हैं, और भक्त लोग आपस में काफी रिसर्च करते हैं इंटरनेट पे उस पर कि लंदन में एक ऐसे फूल मिलते हैं उसको मंगवाएंगे, या फिर एक नया कुट्टू का आटा है उसकी चपाती बड़ी अच्छी बनती है। नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, भक्त लोग उसे से पूरा ज्ञान प्रदान कर देंगे काशी के दिन किसी को खाने पीने की दिक्कत ना हो। कोई बात नहीं, वो भी कोई गलत बात नहीं है। शिला प्रभुपाद जी ने बोला कोई बात नहीं, आप केवल ग्रेन्स मत लीजिए। हालांकि जब इस्कॉन की स्थापना हुई 1970s तक ये ट्रेंड था इस्कॉन में एकादशी जन्माष्टमी व्यास पूजा मतलब निर्जला, ये ट्रेंड था, कोई सोचता भी नहीं था, हालांकि बिल्कुल ट्रेंड था। इवन जो पहली जन्माष्टमी प्रभुपाद जी ने मनाई थी स्टोर फ्रंट में हिप्पीज के साथ, निर्जला, सब निर्जल। देखो तो हिप्पीज के लिए बड़ा हैरानी की बात है, कुछ नहीं करना, बस बैठे रहो निर्जल। प्रभुपाद ने बोला हमें गीता का पाठ करेंगे, प्रभुपाद पूरा दिन गीता पढ़ते रहे, वो सुनते रहे, बुरी हालत हो गई उनके। प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड था उस समय, और अगर वो जन्माष्टमी भी होती थी जन्माष्टमी के बाद निर्जला रख के फिर प्रभुपाद सबको बैठाते, चलो कृष्णा बुक पढ़ते हैं, और कृष्णा पढ़ते ही रहते थे। प्रभुपाद आंखें बंद करके बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और सब सन्यासी बैठे हैं, धीरे धीरे उनका डंडा नीचे गिरना शुरू हो जाता, वो नीचे गिरने शुरू हो जाते थे, फिर प्रभुपाद कहते आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी टायर्ड, है ना, चलो नाउ टेक रेस्ट। रात 2 बजे बोलते थे टेक रेस्ट। तो भक्त लोग कैसे व्रत तोड़ते, थोड़ा सा नींबू पानी पी के अगले दिन फिर प्रभुपाद व्यास पूजा, आफ्टरनून तक फास्टिंग, निर्जला, ये स्टैंडर्ड था 1970s तक। फिर जैसे जैसे प्रचार कार्य बढ़ा, नए भक्त जोड़े, प्रभुपाद ने इसको थोड़ा सा लाइट कर दिया, केवल ग्रेन्स नहीं खाने हैं। जब हम बोलते हैं जय श्री श्री राधा राधे करमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बिंदु सुभद्रा महारानी की, जब हम बोलते हैं ठीक है कोई भी बात होती है, नहीं नहीं प्रभुपाद जी ने हमें ज्यादा तपस्या करने को नहीं बोला, नहीं नहीं प्रभुपाद जी ने ज्यादा तपस्या करने को नहीं बोला, प्रचार का आंदोलन है, प्रचार का आंदोलन है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, हम प्रभुपाद जी की सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो फिर ये भी आगे है कि भीमा एकादशी के दिन निर्जला रहो, ये भी एक आगे है कि जो अंत जो बहुत ज्यादा बीमारी की अवस्था में नहीं है उसको प्रयास करना चाहिए इसका। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इसकी महिमा में, अगर पूरे साल में जो 24 एकादशी हैं उसमें से अगर इस निर्जला एकादशी, भीमा एकादशी इसको बोला जाता है, पांडव निर्जला एकादशी, इस एकादशी को कोई निर्जला रख लेता है तो उसको क्या फल प्राप्त होता है? पूरे साल की एकादशी रखने का व्रत मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। तो हम इसे, हम कई बार बोलेंगे हम तो रखते हैं पूरे साल का, फिर क्या जरूरत है? लेकिन साफ साफ बात करें, बुरा ना माने, इस कलयुग में हम जो कहते हैं कि हाँ हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, हम कुछ कुट्टू का आटा खा लेंगे या साबूदाना ले लेंगे, ये करेंगे, हम सब भी जानते हैं अंदर से कि कोई गारंटी नहीं होते कि ये पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं कि नहीं होते, कोई गारंटी नहीं है। कितनी बारी हुआ है, नहीं नहीं साबूदाना में अन्न था, ये था वो था, फिर हम कहते हैं चलो हो गया सो हो गया। तो इस कलयुग में केवल दो ही चीजें शुद्ध हैं, एक हरिनाम, दूसरी निर्जला एकादशी, और कोई चीज शुद्ध नहीं है। इसलिए चाहे हमें लग रहा हो कि हमने एकादशी रखी है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो एकादशी नहीं है, तो एक निर्जला एकादशी रख के हम सारी एकादशियों का व्रत का लाभ उठा सकते हैं। कि नुकसान का सौदा है, फायदे का सौदा है, बहुत फायदे का सौदा है। तो इसकी जैसे यहाँ पे ये जो श्लोक हमने प्रयार पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु जी अपनी माता जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप महाप्रभु सची माता के चरणों में पड़ गए कि मां मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूं। हम बोले क्या भिक्षा? बोलो क्या चाहिए, जो मांगे वो दे दूंगे, बस एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें। और शिला जी गोस्वामी जी बता रहे हैं भक्ति संदर्भ से कि जो एकादशी के दिन जो वैष्णव अन्न खा लेते हैं, अगर वो बाय चांस वैकुंठ चले भी जाए तब भी नीचे गिर जाएंगे। और भी शास्त्रों ने बताया कि जो वैष्णव एकादशी के व्रत का पालन नहीं करते उनको नरक गामी होना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है। और एकादशी का पालन प्रत्येक वैष्णव के लिए एक नित्य सिद्धांत है, इसका पालन हमेशा ही करना है। और भक्ति के स्वामी सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने 64 अंगों में से भक्ति का एक अंग है एकादशी व्रत का पालन करना, यह हमारा भक्ति का अंग है। हालांकि ये प्राइमरी प्रिंसिपल्स में नहीं है, लेकिन सेकेंडरी प्रिंसिपल है, लेकिन सेकेंडरी रूल्स भी जो होते हैं ये भक्ति के जो मुख्य नियम है उसको ये सहारा देते हैं, उनके लिए आवश्यक है। चाहे भक्ति की किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, कितनी उन्नत अवस्था में क्यों ना हो, यह अपेक्षा की जाती है कि वैष्णव हमेशा एकादशी व्रत का पालन करेंगे। तो ये जो भीमा निर्जला एकादशी, इसकी विशेष महिमा बताई गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी महिमा से हम कुछ पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि भीमसेन को वृकोदर कहा जाता है, वो बहुत, उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो हम देख सकते हैं कि उनकी जो आहार भी कैसा होगा। कहा जाता है कि जब वो उनको 12 साल के वनवास में भी थे तो जो वो भिक्षाटन करके लाते थे उसमें से आधा भीम के लिए रखा जाता था और आधा बाकी घर के 6 सदस्य लेते थे, और उसमें भी भीम संतुष्ट नहीं होते थे। तो एक बारी भीमसेन ने व्यास जी से ये निवेदन किया कि आप हमारे पूजनीय हैं और मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, मेरी माता कुंती देवी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते, और युधिष्ठिर तो हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि मुझे भी उपवास करना चाहिए क्योंकि ये शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन मैं, आप मुझसे जितना मर्जी दान दिलवाना दान दे दूंगा लेकिन मैं उपवास नहीं रख सकता। मुझे मालूम है ये कृष्ण को बहुत प्रिय है लेकिन मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं नहीं रख सकता। देखिए ये भक्ति में दिखाता है कि आप, वो भी वैष्णव हैं, भीम क्या कम भक्त हैं क्या? अच्छे भक्त हैं, और युधिष्ठिर भी अच्छे भक्त हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन तो सब उपवास रखते हैं, भीम जी उपवास नहीं रखते। तो ये भक्ति में भक्तों की वैरायटी है ना, तो वैरायटी है। हमारे यहाँ पे समाज में ऐसे भक्त भी मिल जाएंगे जब वो प्रसाद लेते हैं तो पूरा गिरी गोवर्धन बनाते हैं वो भी अच्छे भक्त हैं, और कुछ होते हैं कि बहुत थोड़ा सा लेते हैं वो भी अच्छे भक्त हैं। एक तरफ भीमसेन है और दूसरी तरफ रघुनाथ दास गोस्वामी है जो पूरे दिन में मुश्किल से 100 ग्राम छाछ बस, और भीमसेन जी को बोला जाए आप 100 ग्राम छाछ लीजिए तो कैसा लगेगा। तो दोनों ही भक्त हैं, तो ये वैरायटी है। तो इस वैरायटी में हमें एडजस्ट करना, हमें सीखना चाहिए। ये नहीं कि किसी की प्लेट में गिरी गोवर्धन देखे बोले कैसे खाता है, ये तो भक्ति अच्छा नहीं है, वो अच्छे भक्त है, वो थोड़ा सा खाते हैं, बड़े अच्छे भक्त है, ऐसा नहीं। हर एक की अपनी कैपेसिटी, हालांकि बोला गया कि भक्त मितभुक होते हैं, जितना आवश्यक है उतना खाते हैं, लेकिन आवश्यकता क्या है आवश्यकता देखनी पड़ेगी। अब भीम जिनमें 10,000 हाथियों का बल है उसका हम अपने से कंपेरिजन करें, हमारे में ज्यादा से ज्यादा 10,000 चींटियों का बल होगा तो वो भी भक्त हैं, ये भी भक्त हैं। तो भीम जी बड़े, जैसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। बोले भैया मेरी लिमिटेशन है, मैं नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। भीम कह रहे हैं कि मैं सोच में नहीं सकता 24 घंटे कुछ ना खाऊं, ये संभव ही नहीं है। पूरा रात दिन का उपवास छोड़ो, मैं तो एक क्षण की भूख को भी सहन नहीं कर सकता। जो जठरा अग्नि है वो मेरे पेट में हमेशा ही जलती रहती है, और तभी भूती है जब मैं खूब खाऊं। तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं नरक जाने से बच जाऊं। व्यासदेव जी ने बोला देखो सभी शास्त्रों का ये निर्णय है, एकादशी के दिन खाना तो नरकगामी बनोगे। जब भीमसेन जी ने यह सुना, इतने विशाल काय भीमसेन, व्यासदेव जी की इस बात को सुन के एक पेड़ की पत्ती की तरह कांपने लगे। ये भक्त लोग अगर शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे तो डरते हैं, और व्यासदेव जी बता रहे हैं कि ये तो कोई उपाय है ही नहीं। बेचारे कांपने लगे और बड़ा निवेदन किया, चलो एक ऐसा उपाय बता दो, एक खाली एक व्रत बता दो बस, मेरे से 24 एकादशी नहीं होगी। तो बहुत करुणा करके व्यासदेव जी ने बोला ठीक है, जो ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है ये निर्जल एकादशी कहलाती है, इसमें आप जल भी ग्रहण ना करें, और अगर किसी को आचमन करना है अपने शुद्धिकरण के लिए तो आचमन में अपनी हथेली में इतना पानी डालें कि सरसों की एक दाना उसमें डूब सके, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई इससे ज्यादा पानी हाथ में डाल के पिएगा तो उसको क्या, अगर कोई इससे ज्यादा पानी पीते हैं तो उसका मतलब हुआ उसने वो पानी नहीं पिया, मदिरा का पान किया है। और इस एकादशी के दिन खाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सारे का सारा व्रत टूट जाएगा, और जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक, और अगले दिन द्वादशी के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को खूब सोना और पानी दान में देना चाहिए। ठीक है, कल फिर काफी अच्छा रहेगा। रोहिणी मंदिर के लिए बहुत आसानी है ना, हम बोलेंगे कि कम से कम दो तीन एकादशी हूं ऐसे। सोने का दान करना चाहिए। और फिर ये तो महत्व बताया गया है कि द्वादशी के दिन भक्तों को प्रयास करना चाहिए, पहले हम दूसरों को पानी सर्व करें, उसके बाद हम ब्राह्मणों के साथ बैठ के जल ग्रहण करें, है ना। हम तो पूरे सौभाग्यशाली हैं, हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में रंती देव जी ने 48 दिन तक उपवास रखा, और जैसे ही व्रत तोड़ने लगे तो अन्य अन्य देवतागण आए उनकी परीक्षा लेने के लिए। आप में से कितने भक्त लोग चाहेंगे कि देवतागण कल हमारी परीक्षा लेने आए? हमने अभी नहीं, कोई परीक्षा नहीं, 5:23 में प्रसाद हो जाए, अच्छी बात है। तो भीमसेन को बताया व्यास देव जी ने कि ये जो एकादशी है इससे क्या क्या परिणाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का पालन करके हमें सभी एकादशियों के पालन करने का लाभ मिल जाता है। और व्यास देव जी बता रहे हैं कि एक बार भगवान विष्णु, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे, उन्होंने बताया कि अगर कोई सभी प्रकारों के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करता है और इस निर्जला एकादशी का पालन करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है और निश्चित रूप से वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति परम धाम को धन देने से या फिर और कोई शास्त्रों के नियम पालन करने से परम धाम गति को प्राप्त नहीं करता, लेकिन इस एकादशी का पालन करने से सुमेरु पर्वत की तरह जो हमारे पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं कि कोई इस एकादशी का पालन करता है तो उसको सारे 30 स्थानों में भ्रमण करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। बैठे बैठे आप पंजाबी बाग में रह के निर्जला एकादशी का पालन करेंगे, आपको पूरे भारतवर्ष में जितने तीर्थ स्थान है वहां जाने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, खुश नहीं हुए आप लोग? और फिर बताया है कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे एकादशी का पालन करता है, मृत्यु के समय भयंकर दिखने वाले यमदूत उसके पास बिल्कुल नहीं आते, जबकि उसके पास सुंदर दिखने वाले विष्णु दूत उसको लेने आते हैं। और जब पांडवों ने इस एकादशी की महिमा सुनी तो उन्होंने दृढ़ व्रत हो गए कि अब इसका पालन करना है, और तब से भीमसेन जी ने भी ये निर्जला एकादशी रखनी शुरू कर दी, और तब से ये निर्जला एकादशी बन गई पांडव निर्जला और भीमसेनी एकादशी। जय भीमसेनी एकादशी की। शिला प्रभुपाद जी कहते थे भीम हो या अर्जुन, एकादशी का मतलब है फास्टिंग। तो एक बार शिला प्रभुपाद से पूछा गया कि एकादशी में हमें 25 माला करनी चाहिए। पापा जी ने बोला 25 क्यों, ज्यादा से ज्यादा, एकादशी मीन्स फास्टिंग एंड चैंटिंग। तो हम सबको ये एकादशी के व्रत का पालन करना है, और जैसा कि हमने बोला ये बहुत सुंदर अवसर है कि हम कृष्ण के प्रति अपना प्रेम बढ़ाएं, अपनी साधना को बढ़ाएं। एक दिन ऐसा जब हम कुछ नहीं करेंगे, अन्यथा पहले अगर हमने अन्न खाना है तो अन्न को खरीदना, उस बाजार से सामान खरीदो, उसको पकाओ, भोग लगाओ, फिर पाओ, फिर पाने के बाद शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, जितनी वायु हैं, अग्नि हैं, वो सब मिलजुल के उस अन्न को पचाती हैं, कितनी शक्ति व्यर्थ होती है। फिर जब अन्न खाएंगे तो थोड़ा विश्राम भी चाहिए, विश्राम करके स्नान करना, फिर उस पेट को साफ करना, और कितना समय व्यर्थ गवाते हैं, है ना। तो आज के दिन कोई ये काम ताम झाम नहीं, आज के दिन क्या करना है, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस केवल यही करना है। एक दिन साल में एक दिन ऐसा हो, हम पूरा इसका लाभ उठाएं। हम सुनते हैं परीक्षित महाराज की कथा, 7 दिन बिना खाए बिना पिए वो सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से कथा अमृत का आस्वादन कर रहे हैं, तो कैसा होगा उनका। यही परीक्षित महाराज थे, यही जब इनको प्यास लगी थी तो उन्होंने शमी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और इसी कारण उनको श्राप दिया गया। और यही परीक्षित महाराज बिल्कुल प्यास से भूख से व्यथित नहीं हो रहे और 7 दिन सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से और भक्तों के संग में भागवतम का पाठ सुन रहे हैं। यानी कि भक्तों के संग में भगवान के नाम में भगवान की कथा में इतनी शक्ति है कि हम तुरंत शारीरिक स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी कुंजी है इस निचला एकादशी को रखने की कि अपने मन को श्रवण कीर्तन में लगाना, एब्जॉर्प्शन। अगर ये नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक एक पल हमें भारी पड़ेगा। तो क्या करना है, अपने मन को भगवान के नाम के जप में कथा के श्रवण में लगाएं। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हमने इस ढंग से एकादशी नहीं रखी तो हमारे में और एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, हॉस्पिटल में पेशेंट है उसको भी कोई खाना पीना मना है और एकादशी के दिन उसका खाना पीना बंद है और हम भी यहाँ कुछ खा पी नहीं रहे, तो क्या वो जो पेशेंट है हॉस्पिटल में वो एकादशी का व्रत रख रहा है क्या, माना जाएगा? नहीं। भक्ति केवल क्रियाएं नहीं है, भक्ति का अर्थ है किस भावना के साथ हमने क्रियाएं की। कृष्ण भावनामृत आंदोलन, भावना क्या है? भगवान को केवल धूप दिखा देंगे, कुछ आगे रख देंगे, भगवान वो स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से। तो ये जो एकादशी है भक्ति से भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें रखने हैं, ये कोई हमारे अचीवमेंट के लिए नहीं है। देखो मैंने निर्जला एकादशी रख ली, पूरा दिन पहले पानी नहीं पिया, हाँ मैं कितना तपस्वी हूं, ये उसके नहीं है। इस तरह की तपस्या से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, ये दिव्य तपस्या है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम एक एकादशी व्रत रख रहे हैं क्योंकि ये तिथि भगवान को बहुत प्रिय है और पूरे कलयुग में और कोई तपस्या बताई नहीं गई, केवल महीने में 2 एकादशी रखनी है और उसमें भी साल में 1 एकादशी निर्जला रखनी है, बस ये कलयुग के लिए तपस्या है, ये अपने आप में पर्याप्त है। तो इसलिए आज पूरा दिन हमने ये प्रयास करना है कैसे मन को हम भगवान के चरणों में लगाएं। इसलिए आज बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, पूरा दिन हम भक्तों के संग में रह सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं। और हमने देखा है हर निर्जला एकादशी के दिन भक्त लोग सारी सीमाएं लांघ जाते हैं और भक्त लोग बोलते हैं कि 64 से भी आगे कर लेते हैं, कई भक्त लोग बोलते हैं हमने 108 माला कर ली है ना। अब भक्त लोग वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे, ले आके बताते हैं प्राइवेटली कि आज तो कमाल हो गया प्रभु जी, इतना आनंद आया जप करने में, किसी बात की चिंता नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ढंग से हम जप करेंगे, हो सकता है मन शुरू में उधर भागे, मन हमें बताए देखो बहुत कमजोरी हो रही है, मुंह सूख गया है, जीभ सूख गई है, क्या जप करोगे, क्यों दिखावा कर रहे हो, ये फॉर्मेलिटी है, ये नियम आग्रह है, प्रभुपाद ने बोला है, भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला है, पहले स्वास्थ्य फिर साधना। तो थोड़ा सा पानी पी के बड़े उत्साह के साथ मैं जप कर सकता हूँ, क्यों ऐसे फॉर्मेलिटी में पड़ा हूँ, ये जप थोड़ी हो रहा है, नहीं, ये सारा मन ऐसी चीजें दिखाएगा। मन को बोलना है हे मन तू क्यों बदमाशी कर रहा है, केवल एक दिन की तो बात है जब मुझसे ये आशा रखी जाती है, अपेक्षा रखी जाती है कि एक एकादशी से पूरे साल की एकादशियों का फल मिल जाएगा, तो मुझे रख ले दो, शट अप, ओके, चुप हो जाओ, मुझे केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा हर एक मन के ऊपर ये ध्यान दे मन से। देखिए इस एकादशी के दिन हम जान जाएंगे शारीरिक स्तर क्या है, मानसिक स्तर क्या है, बुद्धि का स्तर क्या है, आत्मा का स्तर क्या है, बड़े साफ साफ देख पाएंगे। शरीर हो सकता है कमजोर हो रहा हो, मन को लगाएंगे तो शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे ऐसे धूप में मई के महीने में धूप में पतंग उड़ा रहे होते हैं, पसीने निकल रहे हैं, कोई खाने पीने की फुर्सत नहीं, देखा आपने, और पतंग उड़ाते उड़ाते नीचे भी गिर जाते हैं, पूरा मग्न होते हैं, पूरा मग्न पतंग उड़ाने में, पूरी हालत हो जाती है, अगले दिन उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी, लाल हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएंगी, लेकिन वो भूलते नहीं बस पतंग उड़ानी है ना। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी काम अगर एब्जॉर्ब होते हैं तो इंद्रियों के स्तर से ऊपर हो जाता है, और ये तो हम भगवान के दिव्य नामों में। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि कृष्ण और पानी में क्या अंतर है ना, पानी 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 करते रहेंगे तो क्या हमारी प्यास बुझेगी, प्यास और बढ़ जाएगी, हमारा मन और व्यथित हो जाएगा। लेकिन अगर हम कृष्ण 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 करेंगे तो क्या होगा, अमृत प्राप्त होगा। रसो हूं अपसु कौंतेया, भगवान गीता में बता रहे हैं जल के अंदर जो रस है वो मैं हूं। हमें जल चाहिए कि जल का रस चाहिए? रस चाहिए, सीधी बात है। रस प्राप्त करें। रस कैसे प्राप्त करेंगे? कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब बताओ, रस ही रस मिल रहा है, रस ही रस मिल रहा है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं मैं नहीं समझ पा रहा कि दो शब्द कृष्ण ये कितना अमृत उत्पन्न कर रहे हैं। आप पानी की बात कर रहे हो, अमृत ही अमृत, रस ही रस। और जब मैं कृष्ण लेता हूं ये कृष्ण मेरी जीवा पे नाचते हैं, और जब कृष्ण का नाम मेरे कर्णों के द्वारा प्रवेश करता है तो हृदय के आंगन में नाच के सारे मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। और क्या चाहिए है? तो इसलिए मन जहां इधर भटके क्या करना है इसको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एब्सॉर्प्शन। फिर थोड़ा मन हो कोई बात नहीं, हमारे कृष्ण कॉन्शियस में बहुत वैरायटी है। भागवतम खोलिए, भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है द्वादशायाम एकादशायाम वा श्रवणान आयुष आयुष्मान भवेत पठ्यंत्य पठति अंशन प्रयता पूता भवति पातकात्। इसका अनुवाद है जो कोई इस भागवत को एकादशी या द्वादशी के दिन सुनता है उसे निश्चित रूप से दीर्घायु प्राप्त होती है, और जो व्यक्ति उपवास रखते हुए इसे ध्यान पूर्वक सुनाता है वह सारे पापों के फल से शुद्ध हो जाता है। भागवतम पढ़े, और इस एकादशी के दिन हम जो कार्य करेंगे उसका अक्षय लाभ प्राप्त होगा, अव्यय लाभ प्राप्त होगा, वो लाभ कभी क्षय नहीं होगा। एकादशी के दिन गीता का पाठ, भागवतम का पाठ, और साथ साथ में शास्त्रों का वितरण। किसी ब्राह्मण को हम भागवतम का दान दे, गीता का दान दे, उसका जो लाभ प्राप्त होगा अनंत गुणा लाभ उसका बताया गया है। तो अपने मन को हमने एब्जॉर्ब करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ये आज हमारा एक जिसे कहते हैं विशेष अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। हम ये सोच लें ओहो बर्डन है ये, तो ये नहीं करना वो नहीं करना, हम फंस जाएंगे। एकादशी हमारे लिए बर्डन नहीं है, ये हमारे लिए अवसर है। एकादशी रख के हमें बड़ा लाइट महसूस होना चाहिए, सुसुखम कर तुम अव्ययम। हमें पूरी उम्मीद, अगर हम जिनसे एकादशी रखेंगे कल हम यहां पर आएंगे तो भक्त लोग पूछाएंगे कि हमने 5:23 पे व्रत नहीं तोड़ना, हम 10 बजे तक रखेंगे निर्जला एकादशी। इतना उत्साह होगा हमारे अगर हम वास्तव में ऐसा करेंगे, सही ढंग से हरे कृष्ण मोहन का जप कीर्तन होगा तो पूरी रात का जागरण भी है, तो बड़ी खुशी खुशी इसका हम पालन कर सकते हैं। इस व्रत को उपवास कहा जाता है। उपवास का अर्थ क्या है? कृष्ण के पास रहना है ना। और अगर इस ढंग से हम अमृत का आस्वादन करेंगे, कृष्ण के नाम के अमृत का आस्वादन करेंगे, कृष्ण के कथा अमृत का आस्वादन करेंगे, तो ये फीस्टिंग नहीं होंगे। फीस्टिंग है कि नहीं? इट इज फीस्टिंग फॉर द सोल, ये आत्मा के लिए फीस्टिंग है। इसलिए महाप्रभु का आंदोलन हमेशा ही रहेगा, चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग। शरीर की जो फीस्टिंग है ठीक है, उससे भी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, लेकिन हरि नाम हरि कथा का आस्वादन करेंगे तो पूरा ये आत्मा के लिए फीस्टिंग है। तो चलिए आज हम इस स्तर पे, आत्मा के स्तर पे आकर इसका करने का प्रयास करेंगे। शीला प्रभुपाद अपनी अंत्य लीला में जब वृंदावन में थे तो प्रभुपाद कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, फिर भी भक्ति चारू स्वामी महाराज और उपेंद्र प्रभु प्रतिदिन उनके लिए लंच बनाते थे, और बहुत बड़ी थाली में लंच लेके आते थे। प्रभुपाद दूर से कहते थे पांड, तो वहाँ बोलते थे सब भक्तों के लिए फीस हो जाती थी, सब लोग बोलते मुझे ये चाहिए, मुझे पूरी दो, मुझे हलवा दो, मुझे गुलाब जामुन दो। तो प्रभुपाद ने देख लिया, प्रभुपाद ये सही चेतना नहीं है। प्रभुपाद ने बुलाया उपेंद्र, बोला सब मिक्स कर दो, चावल पूड़ी खीर गुलाब जामुन समोसा सब मिक्स कर दो, अब ले जाओ। सब भक्तों के चेहरे लटक गए, ये क्या है? प्रभुपाद ने बोला नहीं, कभी भी डिस्क्रिमिनेट मत करो, खाओ। फिर क्या हुआ कि तभी जून का महीना है, निर्जला एकादशी है, तो निर्जला एकादशी आई तो भक्त लोग जो प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए थे बहुत थके हुए थे, उनको पता नहीं लग रहा था कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने निर्जला एकादशी रखी। और अगले दिन फिर से लंच की प्लेट लगे प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद ने फिर बोला ले जाओ। तो इस समय वो उपेंद्र रो पड़े, बोले प्रभुपाद हम अभी इतने युवा हैं, आप इतनी वृद्धावस्था में हैं, हमने केवल एक निचला एकादशी रखी, एक दिन का व्रत रखा, हम इस समय बहुत थके हुए हैं, हमारे शरीर इतना कमजोर हो गया, और आप पिछले महीने एक महीने से आप कुछ नहीं खा रहे। सो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। प्रभुपाद कहते हैं आई एम लिविंग प्रूफ दैट सोल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द बॉडी फॉर सस्टेनेंस, बट रादर द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द सोल। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं जीवित जीवंत उदाहरण हूं कि जो आत्मा है वो शरीर पर निर्भर नहीं करते अपने अस्तित्व के लिए, बल्कि शरीर आत्मा पर निर्भर करता है। तो हमको भी ये विश्वास होना चाहिए कुछ नहीं होगा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, एक दिन हम जल ग्रहण नहीं करेंगे आत्मा में कोई विकार नहीं आएगा, हमारी आत्मा डिहाइड्रेट नहीं होती है, कुछ नहीं होगा, हमारा सच्चित आनंद स्वरूप बना रहेगा, बल्कि और निखर के सामने आएगा। इसमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए कि मेरा स्वरूप में विकार आ जाएगा, बल्कि हम और अपने स्वरूप को जानने की यात्रा में और आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये फीस्टिंग फॉर द सोल है, ये वास्तविक आज हम उपवास रखें और सब भक्त एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं। एकादशी के दिन हम जागरण करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर पूरा दिन एसी ऑन करके सोएंगे कि जागरण में फ्रेश रहूंगा, नहीं, पूरे एकादशी के दिन सोना अलाउड नहीं है, हमें सोना नहीं चाहिए। अगर हम सोते हैं एकादशी के दिन तो हमें जितना फल मिलना चाहिए वो फल में प्राप्त नहीं होगा। तो बोलेंगे तो बहुत गलत बात हो गई, कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, अगर नींद आ रही होगी, शरीर बहुत थक रहा होगा तो हम खड़े हो सकते हैं, दूसरे पद का सहारा ले सकते हैं, वो भी उठ जाएगा बेचारा तो एक दूसरे को सहारा देकर बोले कोई बात नहीं, एक और एक ग्यारह होते हैं, तो मिलजुल कर हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए आगे बढ़े, है ना। जब भी कोई दूसरा डाउन हो रहा हो उसको बोलो समझाओ फीस्टिंग फॉर द सोल है प्रभु, चलो आत्मा को बहुत खुराक मिल रही है, और हम पूरा अच्छे ढंग से कीर्तन करें, कथा का श्रवण करें और कीर्तन करें, तो इससे हम अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस निचला एकादशी को देखें। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में हमारी उन्नति निर्भर करती है हमारे एटीट्यूड के ऊपर, किस ढंग से किस मानसिकता के साथ हम इस एकादशी का पालन कर रहे हैं, किस मानसिकता के साथ, तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे कि ये आज का दिन मैं अपने आप को चेक कर सकता हूँ कि मेरी साधना में मेरे भजन में कितनी गहराई है। अक्सर जब हमें सही खान पान मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, हम साधना भी अच्छी कर रहे हैं तथा लगता है हमें, तो हमें लगता है बहुत अच्छा मैं साधना कर रहा हूँ, जब मैं बैठ के करता हूँ, रोज उठ जाता हूँ, सुबह अच्छा चल रहा है मेरा। आज के दिन वो आएगा मौका कि शरीर की तकलीफें हैं और मन भी इधर उधर भाग रहा है, तो मेरे हरिनाम में कितनी रुचि है, प्रयास करें तो हमें अपने आप ये स्पष्ट हो जाएगा, है ना। और फिर ये हमें ऐसी अनुभूति हमें विनम्र बनाती है कि अभी मुझे और मेहनत करनी है, और मुझे हरिनाम में रुचि उत्पन्न करनी है। जिस भक्त की जितनी मात्रा में हरिनाम में रुचि होगी उसको इतनी कठिनाई नहीं होगी, और जैसे 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 हम भक्ति में परिपक्व होते हैं हमारी हरिनाम और हरि कथा में रुचि बढ़ती जाती है, हम इन शरीर की मुश्किलों से ऊपर उठते जाते हैं, इसका प्रभाव हम पे इतना नहीं पड़ता जैसा कि प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो आज के दिन हम ये प्रयास करें, ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम सब भक्तों के संग में, जब भक्तों के संग में होते हैं तो दुविधा भी बहुत बड़ी एक सुविधा बन जाती है, है ना। और हम देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गुंगा क्या करता है, बोलना शुरू हो सकता है, और बहरा सुनना शुरू हो सकता है, अंधा देखना शुरू कर सकता है, और लंगड़ा चलना नहीं पहाड़ पार कर सकता है। तो क्या चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम एक निजला काशी नहीं रख सकते, जब इतने बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे, श्री चैतन्य दया करे विचार, विचार करे चित्ते पावे चमत्कार, चैतन्य महाप्रभु दया पर विचार करेंगे तो विचार करने पाएंगे कि चमत्कार ही चमत्कार है। तो क्यों नहीं हम जब भी थोड़ा डाउन हो रहे हो तो क्या करना है, हमें नित्यानंद प्रभु को याद करें, Nityananda,
Gauranga,
Gauranga,
Nityananda.
बस पूरी शक्ति मिल जाएगी, बलराम जी से शक्ति की प्रार्थना करें, बल की प्रार्थना करें और अपने मन को बार बार ट्रैक पे लाते रहें। कुछ नहीं पड़ा, कल पीलेंगे। कल बहुत सुंदर फीस्ट का आयोजन किया गया है, सबको जल मिलेगा, सबको बढ़िया प्रसाद मिलेगा। एक कुछ ही तो घंटों की बात है, कितने घंटे लगे। और साथ में हमारी दृढ़ता को देखते हुए सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण देव, इंद्र देव सब कॉपरेट करेंगे। आज सुबह से इतनी सुंदर सुंदर हवा चल रही है और बताया गया है, पिछले साल भी था, इस साल भी है, पूरा वेदर फोरकास्ट है कि शाम को ओले भी पड़ सकते हैं। तो पूरा फर्स्ट क्लास ठंडी हवाएं चलेंगी और आराम से हम बैठ के जप करेंगे। और सब लोग कम से कम 64 माला करने का प्रयास करें, कम से कम 1-2 घंटे भागवतम का अध्ययन और श्रवण लेक्चर सुने और फिर एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें। बस पूरा दिन बड़े आराम से निकल जाएगा और हम लोग प्रतीक्षा करेंगे अगले साल से कब आएगी निजला एकादशी। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं और हम सब प्रार्थना करते हैं कि इस निजला एकादशी को हम सही चेतना से इसका पालन कर सके और ये एक माध्यम बने हमारे भक्ति में अग्रसर होने के लिए और ये उपवास हो, वास्तविक रूप से हम अपने इष्ट राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम के और अपने आप को समीप पाए। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इसे कोई क्वेश्चन या कमेंट्स? हाँ जी प्रभु जी, माइक में।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला ये है कि लाइक एकादशी है, क्या नॉन वैष्णव्स पर एकादशी ना रखने का कोई रिएक्शन पड़ता है?
निश्चित रूप से, नॉन वैष्णव हो या वैष्णव, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जो अन्न ग्रहण करेगा, अन्न के अंदर बताया गया, जैसे हम बता रहे हैं, उसके अंदर ब्राह्मण हत्या, माता पिता, भाई तथा गुरु की हत्या का उसको पाप लगता है। बैठे बैठाए बेचारे कुछ नहीं किया, उसने बोला चलो एक समोसा खा लेते, समोसा नहीं खा रहा हो, उसने बेचारे ने समोसा खाया और क्या कर दिया, ब्राह्मण की हत्या, माता पिता की हत्या, गाय की हत्या, गुरु की हत्या, करे पता नहीं चल रहा है। ये कर्मों की गति किसी को पता ही नहीं, तभी तो संसार में लोग अज्ञानता के कारण दुखी हैं। एक और विशेष घटना हुई थी, अभी हम द्वारका में गए थे तो वहां पे हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बता रहे थे कि पांडव निजला एकादशी के दिन ही कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था। तो ये तिथि और भी शुभ बन जाती है। और कुछ दूसरा प्रश्न था?
दूसरा ये कि हम लोग जो बाहर सुनते हैं कि लोग जो है पूरे साल एकादशी नहीं रखते, केवल निर्जला एकादशी का ही व्रत का पालन करते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग तो पूरा एकादशी का पालन करते ही हैं। इसकी छूट ऐसा नहीं है कि हम बाकी एकादशी के दिन फिर अन्न खाते रहें और एक दिन ऐसा रख लें। बाय चांस अगर हमसे एकादशी टूट जाती है या सही ढंग से पालन नहीं होता तो उसके लिए है। एकादशी का पालन करना वैष्णवों के लिए नित्य सिद्धांत, परमानेंट प्रिंसिपल है, इसको पालन करना ही करना। हाँ, ये बताया गया इस महात्म्य की पुस्तक में लिखा गया है, जो शुद्ध एकादशी है वो शुरू होती है सूर्य उदय से 96 मिनट पहले, 1 घंटा 36 मिनट पहले सूर्य उदय से पहले शुरू होती है। एकादशी व्रत जो माना जाता है सनराइज, जो सूर्य उदय से सूर्य उदय तक, इतिहास कब से शुरू हुआ है? अब ये तो बताया गया शास्त्र में, क्योंकि हम देखते हैं कि पांडव लोग भी उसका पालन कर रहे थे, अम्बरीश महाराज भी सतयुग में पालन कर रहे थे, तो ये सनातन ही है, पुराणों में इसकी कथा आई है तो सनातन ही है। जड़ तत्वान निवर्तन थे, लेकिन पूरे ये महिमा बताई गई है कि ये भगवान ने जो कह दिया, ऐसा थोड़ी पकड़ सकते हैं भगवान को कि आपने गीता में बोला, आप मुझे कैसे भेज सकते हैं, भगवान केस कर देंगे कि आपने बोला जद गत्वान निवर्तन थे, अब मैंने एकादशी के दिन अन्न खा लिया, मुझे वापस क्यों भेज रहे हैं। भगवान की इच्छा है, भगवान बता रहे हैं मेरे काशी का पालन करो, ये तिथि मोहि बहुत प्रिय है। तो ऐसे केसेस में बताया गया, शास्त्र में बताया जाएगा कि ऐसे केसेस में अगर वैकुंठ जाएगा भी तो उसको वापस आना पड़ेगा। दैट मीन्स हर स्थिति में हमें काशी का पालन करना है, ट्राई टू गेट दैट स्पिरिट। उनके लिए नहीं है, किस चेतना से हम इसको रख रहे हैं, जो सम्राट लोग हैं, सम्राट ब्राह्मण हैं, वो उसमें अपने कर्म कांड के रूप से रखते हैं, तो उनको वो लाभ प्राप्त होंगे। धीरे 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 होगा, लेकिन अगर उनकी चेतना है कि इस लाभ को प्राप्त करने हैं, तो वो उनकी वो इच्छाएं पूरी होंगी और स्लोली स्लोली वो भी प्रोग्रेस करेंगे। यस
आज के दिन जो लोग जल की छबील लगाते हैं और भंडारे लगाते हैं, तो उसका क्या प्रयोजन है?
अज्ञानता, कल लगाना चाहिए।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, कृष्णा जी को एकादशी इतनी प्यारी क्यों
है? कृष्ण को एकादशी क्यों प्रिय है? प्रिय है, भगवान है, स्वतंत्र है, और फिर सिर्फ कथा भी थी पूरी, कथा विस्तार में है बहुत, कि कैसे एकादशी देवी उत्पन्न होती है भगवान से, और काशी जी ने भगवान से ये वर मांगा और भगवान ने उनको वरदान दिया कि हम ये बहुत प्रिय होंगे, जब आपके व्रत का पालन करेगा वो मेरे को प्रिय हो जाएगा। इट इज अ वरदान दिया भगवान ने काशी देवी को। हाँ जी, पर पीछे
हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो एकादशी का व्रत है पूरे दिन का फास्टिंग, ये तो ठीक है, लेकिन रात को जगने का क्या महत्व है, और इसका भी क्या पुराण कहीं वो है, क्योंकि रात को जगने के बाद नेक्स्ट डे भी वर्किंग इफेक्ट होती है।
नेक्स्ट डे
वर्किंग जो है हमारे जो अपने कार्य है वो रात को अगर पूरा जगेंगे, तो क्या रात को जगने का भी क्या इसमें, अगर रात को ना जगे बाकी रखें तो?
हाँ, कोई बात नहीं, अगर रात को आप नहीं जग सकते कोई बात नहीं, अपनी सुविधा के साथ आप करें। एक सुविधा दी गई है, अगर कोई एक, हम ये नहीं करेंगे हर एकादशी में आप जागरण कीजिए, कई भाग लोग करते हैं लेकिन सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है, अपने स्थिति को देखते हुए, अगले दिन का शेड्यूल देखते हुए, हम आवश्यकता नहीं है कि हर एकादशी को हम जागरण करें। ये इसलिए सुविधा दी जाती है कि अक्सर फिर रात को भक्तों के लिए निर्जल रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया कि हर एकादशी में जागरण करो, 24 घंटे भगवान का कीर्तन करो, पूर्ण रूप से मग्न रहो भगवान के कीर्तन में। हम लोगों की स्थिति के लिए हम तो जागरण इसलिए रख रहे हैं कि हम लोग से कहीं व्रत टूट ना जाए और सब लोग भक्तों के संग में रहें और पूरा लाभ उठा पाए, तो आपके ऊपर है, अगर आप रख सकते हैं तो बहुत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है।
हेलो, मतलब इससे कोई नुकसान तो नहीं है?
नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं, ऐसा कुछ नहीं,
या कुछ
नहीं, नहीं, ज्यादा लाभ प्राप्त होगा अगर आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं। पूरे दिन भक्तों के संग में रहना चाहिए, ऑफिस है, एग्जाम है, प्रभु जी कह रहे हैं कि ऑफिस जाना तो कैसे भक्तों के संग में रहेंगे। देख लीजिए, कई भक्तों को मालूम है इस दिन 16 जून को निजला एकादशी आनी है, तो अपना शेड्यूल वैसे ही सेट कर लेते हैं, ये प्लानिंग करनी पड़ती है। देखते हैं, अगर आप प्लान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे उतना ज्यादा लाभ उठाएंगे।
सेना में तो अन्न छोड़ना जो है क्राइम है।
हाँ जी,
सेना में,
हाँ,
सैनिक जो है केवल जो डॉक्टर लिखता है खाना नहीं है, उसके बगैर आप खाना खाओगे तो नहीं खाते तो क्राइम है।
अच्छा,
क्या करना चाहिए?
वो तो वैसे ही क्रिमिनल है उनका, आप क्या
सैनिक क्रिमिनल कैसे है?
क्रिमिनल वो तो अन खाना, रोज के दिन भी अन खाओगे तो उनके लिए क्राइम है, वो तो पता नहीं क्या क्या खाते।
नहीं, क्या क्या नहीं, ये तो मैं एकादशी की बात कर रहा हूँ।
हाँ,
आपने बोला ना एकादशी के दिन कुछ नहीं खाना चाहिए।
हाँ,
लेकिन एक सैनिक है जो
सैनिक के लिए,
सैनिक के लिए
क्या? अच्छा अच्छा, हमें कुछ और सुनाया
नहीं, नहीं।
तो ऐसा नहीं है, हमारे कई भक्त आर्मी में भी हैं,
मैं खुद ना इसलिए मुझे
हाँ, तो आर्मी में भी हैं और वो एकादशी का पालन करते हैं, ऐसा नहीं। और हम देखते हैं कि हम क्या आजकल रोजे चल रहे हैं रमजान, और रमजान में सुबह 4:15 बजे उठ के कुछ खा लेते हैं और पूरा दिन निर्जल रहते हैं, पूरा दिन एक महीने के लिए, और पूरी ड्यूटीज करते हैं अपने साथ, और उसके बाद वो रात को फिर कुरान पढ़ते हैं, उससे कुछ मोहम्मद के संदेश पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप सब भक्तों को शुभकामनाएं पांडव निर्जला एकादशी की, और हमें पूरी उम्मीद है आप सब में से कितने भक्त लोग उत्साहित हैं निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए। हरिवो 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 हरिवो।